हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर 12 जिसका शीर्षक है आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने खगोलीय पिंड, भारतीय पंचांग, नक्षत्र, सौर्यमंडल एवं इसके ग्रह जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लिया है और अब हम राशियाँ, उत्तरायण, दक्षिणायण, बुध एवं शुक्र पारगमन, तिथियां, भारतीय महीनों के नाम का आकाशीय संबंध, भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि पंचांग का मतलब क्या होता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं और हमारे सौर्यमंडल के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमने पढ़ी थी, जहाँ हमने पढ़ा कि सौर्य परिवार क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, हमारे सौर्य परिवार में कितने ग्रह हैं, हमारे सौर्यमंडल का तारा कौन है, यह सब जानकारी आपको पहले से भी थी और हमने उसको एक बार फिर से पढ़ा है। फिर सारणी 12.2 में जो महत्वपूर्ण जानकारी है ग्रहों के बारे में है वह भी हमने पढ़ा है, जहाँ से हमने कुछ प्रश्न उठाए थे जिसके लिए मैंने कहा था कि उसके उत्तर आप स्वयं ढूंढें। मुझे आशा है कि आपने उन प्रश्नों के उत्तर को खोज लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। सौर्यमंडल और उसके ग्रह के बारे में समझने के बाद अब हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर न्यूज़पेपर और टीवी में राशियां जैसे शब्द के बारे में सुना होगा। कुछ व्यक्ति जो धार्मिक ग्रंथों में विश्वास रखते हैं वे प्रतिदिन सुबह समाचार पत्र लेकर अपनी राशि पढ़ते हैं। ये राशि होती क्या है, इसका निर्धारण कौन करता है कि कौन व्यक्ति किस राशि में है, कैसे होता है यह निर्धारण, क्या राशियां जो होती हैं वो सच होती हैं, क्या हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, यह सब प्रश्न के उत्तर मैं नहीं दूंगा, परंतु आप इसके बारे में सोचें जरूर। हम अब राशियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपने किताब के पेज 147 को निकालिए और देखिए राशियां। जिस प्रकार नक्षत्रों का नामकरण चंद्रमा के पथ के आधार पर किया गया है, उसी प्रकार राशियों का संबंध पृथ्वी भ्रमण से है। पृथ्वी के क्रांति पथ को 12 विभागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग को एक राशि माना गया है। भारतीय पंचांग अनुसार इन राशियों के नाम व आकृति आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की आकृति विशेष के आधार पर रखे गए हैं। राशि चक्र के विभाग नक्षत्र चक्र के विभागों से बड़े होते हैं, अतः किसी राशि में 2 या 3 नक्षत्र तक हो सकते हैं। एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, अतः एक राशि में 9 चरण आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, चूंकि पृथ्वी लगभग एक वर्ष में सूर्य के चक्कर लगाती है, अतः सूर्य प्रत्येक राशि पर 1 माह रहेगा। इन राशियों की स्थितियों को 12 सौर्य मास के रूप में जानते हैं। इसके लिए सारणी 12.3 का अवलोकन करें। यहां पर सारणी 12.3 दी गई है, जहां पर क्रम संख्या, राशि और उसकी आकृति बताई गई है। मैं राशियों और उनकी आकृतियों के बारे में पढ़ता हूं। पहली राशि है मेष, जिसे इंग्लिश में एरिस कहते हैं। इसकी आकृति भेड़ है। दूसरी वृष मतलब टॉरस, जिसकी आकृति बैल है। 3 मिथुन अर्थात जेमिनी, स्त्री पुरुष का जोड़ा। कर्क कैंसर, केकड़ा। सिंह लियो, शेर कन्या, वर्गो लड़की, तुला लिब्रा तराजू, वृश्चिक स्कॉर्पियो बिच्छू, धनु सैगिटेरियस धनुष, मकर कैप्रिकॉर्न मगरमच्छ, कुंभ एक्वेरियस घड़ा। और 12वीं राशि है मीन, जिसे पिशस इंग्लिश में कहते हैं और इसकी आकृति मछली होती है। पृथ्वी जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाती है तो इसे संक्रांति कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे सूर्य की संक्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करता है तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह अधिकतर 14 जनवरी को आती है। तो यह है राशि के बारे में जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। राशि क्या है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यह हमको पता है। तो जिस ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस ऑर्बिट को 12 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग को एक राशि के नाम से जाना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है उत्तरायण दक्षिणायन। किताब में देखिए, आपने महाभारत में पढ़ा कि भीष्म पितामह मृत्यु के समय बाणों की सैया पर लेटे रहे। कारण सिर्फ इतना था कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि उत्तरायण से क्या अभिप्राय है। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, इसे पृथ्वी का क्रांति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की क्रांति वृत्त को दो भागों में बांटे तो सूर्य की स्थिति 6 मास पर्यंत तक प्रतिदिन पूर्व उत्तर पश्चिम रहती है, इसे उत्तरायण कहते हैं। अगले 6 मास सूर्य की स्थिति प्रतिदिन पूर्व दक्षिण पश्चिम की होती है, इसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण काल में पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है जिस कारण सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर अधिक समय रहता है, अतः उत्तरायण में दिन बड़े व रात्रि छोटी होती है। मकर संक्रांति से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। उत्तरायण काल में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन ये 6 राशियां पृथ्वी क्रांति पथ में पड़ती हैं। इसी प्रकार कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इसमें दिन छोटे व राशि बड़ी होती है। इसमें कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु ये 6 राशियां इस पथ में पड़ती हैं। इसी प्रकार कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इसमें दिन छोटे एवं रात्रि बड़ी होती है। इसमें कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु ये 6 राशियां इस पथ में आती हैं। अब कुछ विशेष जानकारियां हैं जिसमें कहा गया है कि 21 जून तथा 22 दिसंबर को सूर्य क्रमशः कर्क व मकर रेखा पर पहुंचता है। कर्क मतलब उत्तरी अयनांत, मकर रेखा मतलब दक्षिणी अयनांत। एक और जानकारी है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है और पृथ्वी का आधा प्रदीप्त भाग दोनों ध्रुवों को समान रूप से शामिल करता है तब दिन एवं रात्रि की अवधि बराबर होती है। ऐसा वर्ष में 2 बार होता है, इनमें से 21 मार्च को बसंत विषु तथा 22 सितंबर को शरद विषु कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, गतिविधि 12.3। विद्यार्थियों से प्रश्न करें कि मकर संक्रांति पर्व पर क्या कार्य किए जाते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा बताए कार्यों के पीछे वैज्ञानिक एवं नैतिक आधारों को शिक्षक चर्चा कर स्पष्ट करें। एक विशेष जानकारी और है, हमारे सूर्य परिवार की अभिकल्पना में सूर्य को स्थिर माना गया है, अतः यहाँ सूर्य गति से तात्पर्य है कि पृथ्वी की गति के कारण सूर्य की स्थिति में परिवर्तन। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे चलती रेलगाड़ी की खिड़की से देखने पर पेड़ रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में भागते नजर आते हैं। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि क्रांति वृत्त किसे कहते हैं और फिर उत्तरायण किसे कहते हैं, दक्षिणायन किसे कहते हैं। आप अपने किताब के पेज नंबर 148 में चित्र 12.4 को देखिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा लगाए गए चक्कर को यहाँ समझाया गया है। फिर हमने यह भी जाना कि उत्तरायण में दिन बड़ी और रातें छोटी क्यों होती हैं। उत्तरायण काल में किन किन राशियों से होकर पृथ्वी गुजरती है और दक्षिणायन काल में पृथ्वी किन किन राशियों से होकर गुजरती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, बुध एवं शुक्र पारगमन। किताब में देखिए, हमारे आकाश में पूर्वानुमानित कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। इनमें से कुछ घटनाओं की वर्षों बाद पुनरावृत्ति भी होती है। ये घटनाएं पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती हैं। ऐसी ही दो घटनाएं जिन्हें बुध पारगमन एवं शुक्र पारगमन से जानते हैं का विवरण नीचे दिया जा रहा है। सबसे पहले शुक्र पारगमन के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र पारगमन, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिट ऑफ वेनस कहते हैं, तब होता है जब शुक्र ग्रह सीधे सूर्य और पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह के बीच आ जाता है। पारगमन के दौरान शुक्र सूर्य के चेहरे पर एक काले तिल जैसा दृष्टिगोचर होता है तथा आर पार खिसकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह पारगमन के दौर आमतौर पर घंटों में मापे गए। 21वीं सदी का अंतिम शुक्र पारगमन 5 व 6 जून 2012 को हुआ तथा यह पारगमन 6 घंटे चला था। आगामी पारगमन 10-11 दिसंबर 2117 में होगा, जो भारत सहित विश्व के कई देशों में देखा जाएगा। पारगमन का मतलब है कि किसी ग्रह का सूर्य के सामने से होकर गुजरना। यह बहुत ही दुर्लभ घटना होती है और सामान्य रूप से इसे देख पाना काफी दुर्लभ होता है। फिर भी 100 वर्ष या 120 वर्षों में जब यह होता है तब इसे देखकर इसके बारे में समझा जाता है। उसी तरह शुक्र पारगमन और बुध पारगमन भी दो घटनाएं हैं। शुक्र पारगमन का मतलब है कि शुक्र ग्रह सीधे सूर्य और पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह के बीच आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में शुक्र का आना ही शुक्र पारगमन कहलाता है। पार का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ और गमन का मतलब होता है जाना। तो सूर्य के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पारगमन कहलाता है। यहां पर शुक्र के बारे में कहा गया है, मतलब शुक्र ग्रह जब सूर्य के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती है और इस घटना को जब हम पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह से देखें तो उसे शुक्र पारगमन कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बुध पारगमन। यह भी बिल्कुल उसी तरह होता होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। बुध जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आता है तो पृथ्वी से ऐसे दिखता है मानो सूर्य के चेहरे पर एक काला तिल हो। इस खगोलीय घटना को बुध पारगमन कहते हैं। बुध पारगमन की घटना शुक्र पारगमन से कम समय तक होती है क्योंकि बुध सूर्य से अधिक नजदीक है, इसलिए तेजी से परिभ्रमण करता है। यह घटना मई या नवंबर में घटित होती है। अंतिम तीन बार यह घटना क्रमशः 1999, 2003 एवं 8 नवंबर 2006 में घटित हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2016 में पुनः यह घटना घटित होगी। चूंकि मैं यह ऑडियो 2020 में बना रहा हूं, इसलिए यह घटना पहले ही घटित हो चुकी होगी। वैज्ञानिक इन खगोलीय घटनाओं का अति सूक्ष्मता से प्रेक्षण करते हैं और कई खगोलीय गणनाओं में इसका उपयोग करते हैं, जैसे पृथ्वी शुक्र के मध्य दूरी के मान को परिशुद्ध करना। इन घटनाओं का प्रेक्षण वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान के नए अवसर खोलता है। जैसा हमने शुक्र पारगमन के बारे में पढ़ा, बुध पारगमन भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। जब बुध सूर्य के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तब उसे हम बुध पारगमन कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध ग्रह आता हो। शुक्र पारगमन में भी यह होना जरूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ही शुक्र का आना जरूरी होता है, तभी हम उसे शुक्र पारगमन या बुध पारगमन कहते हैं। शुक्र पारगमन की तुलना में बुध पारगमन जल्दी जल्दी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है और उसकी कक्षा शुक्र की तुलना में बहुत छोटी भी है। अब एक विशेष जानकारी यहां पर दी गई है, हम उसे पढ़ते हैं। 3 जून 2014 को क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान जो मंगल पर था, उसने बुध पारगमन को देखा। यह पहला अवसर था जब ग्रहों के पारगमन को पृथ्वी से हटकर देखा गया। इसके लिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं किताब में, आप उसे जरूर देखें। किताब में पेज नंबर 149 व 150 पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं तिथियां। किताब को देखिए, अमावस्या के अंत पर सूर्य चंद्र दोनों एक समान राशि अंश पर रहते हैं। शीघ्र गतिमान चंद्रमा जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों का अंतर सिद्ध करता है तो उस कालांश अंतरांश को प्रतिपदा कहते हैं। इसी प्रकार 12 से 24 अंतरांश पर तृतीय तिथि का स्वरूप बनेगा। पूर्ण अस्पष्टता के लिए सारणी 12.4 का अवलोकन करें। नीचे सारणी 12.4 दी गई है, मैं इसे पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्रम संख्या है, सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश है और तिथि का नाम है। क्रम संख्या 1, सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश है 0 से लेकर 12 तक, तब तिथि का नाम होगा प्रतिपदा या एकम। क्रम संख्या 2, सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश 12 से 24, तिथि का नाम द्वितीय। सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश 24 से 36, तिथि का नाम तृतीय। 36 से 48, चतुर्थी। 48 से 60, पंचमी। 60 से 72, षष्ठी। 72 से 84, सप्तमी। 84 से 96, अष्टमी। 96 से 108, नौमी। 108 से 120, दसमी। 120 से 132, एकादशी। 132 से 144, द्वादशी। 144 से 156, त्रयोदशी। 156 से 168, चतुर्दशी। 168 से 180, पूर्णिमा। तो यह थे तिथि के नाम, सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश। और अब आगे पढ़ते हैं। यह चंद्रमास का एक हिस्सा है जिसे शुक्ल पक्ष से जानते हैं। इसी प्रकार 180 डिग्री अंश के अंत से 168 अंश तक 12 अंश न्यूनांतर बनने पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का स्वरूप बनेगा। यह क्रम चलते रहने पर 12 से 0 अंतरांश होने पर अमावस्या तिथि हो जाएगी। इस प्रकार शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं। इन तिथियों में किसी तिथि के कुल भोग समय में कमी या वृद्धि भी होती रहती है। तो यहाँ पर तिथियों के बारे में बताया गया है। तिथि जो हमारे भारतीय पंचांग में लिखी रहती है वह सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश की वजह से होती है। अगर अंतरांश 0 से 12 हो तो वह एकम होती है, और अगर अंतरांश 168 से 180 हो तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय महीनों के नामों का आकाशीय संबंध। आपने पूर्व अनुच्छेद में 12 सौर्य मास के बारे में जाना जो सूर्य गति से संबंध है। इसी प्रकार चंद्रमा की गति से चंद्रमास का संबंध है। चंद्रमास भी 12 होते हैं। चंद्रमासों का नामकरण चंद्रमा के क्रांति पथ में पड़ने वाले नक्षत्रों एवं राशियों के आधार पर हुआ है। अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहा जाता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उस महीने का नाम उस नक्षत्र के अनुसार होगा। जैसे कार्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर रहेगा। नीचे सारणी में और स्पष्ट किया गया सारणी 12.5। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्रम संख्या, नक्षत्र, राशि और माह का नाम दिया गया है। मैं सबसे पहले नक्षत्र, फिर राशि और अंत में माह का नाम पढ़ूंगा। चित्रा नक्षत्र राशि मेष है और माह का नाम चैत्र है। विशाखा नक्षत्र राशि वृष, माह का नाम वैशाख। ज्येष्ठा नक्षत्र मिथुन राशि, माह का नाम ज्येष्ठ। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा कर्क राशि, माँ का नाम आषाढ़। श्रवण सिंह, श्रावण, माँ का नाम है और नक्षत्र का नाम पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद, राशि कन्या और माँ का नाम भाद्रपद। अश्विनी नक्षत्र का नाम, तुला राशि, अश्विन माह का नाम। कृतिका नक्षत्र, वृश्चिक राशि, कार्तिक माह का नाम। मृगशिरा नक्षत्र का नाम, धनु राशि, मार्गशीर्ष माह का नाम। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का नाम, राशि मकर, माह का नाम पौष। मघा नक्षत्र, कुंभ राशि, माघ माह का नाम। और अंतिम और बारहवां नक्षत्र का नाम है पूर्वा फाल्गुन या उत्तर फाल्गुन, नक्षत्र का नाम मीन राशि और फाल्गुन माह का नाम। यहाँ पर एक विशेष जानकारी यह भी दी गई है कि चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों में भी अंतर है। सौर्य एवं चंद्रमास में सामंजस्य रखने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक चंद्रमास की वृद्धि मानी जाती है, जिसे अधिक मास से जाना जाता है। 150 से 200 वर्षों में एक मास का क्षय भी किया जाता है। यहाँ पर हमने भारतीय महीनों के नामों का आकाशीय संबंध जाना। जो महीनों के नाम भारतीय पंचांग में लिखे होते हैं वह सभी नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और उनसे किस राशि का संबंध है हमने यह भी जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अंतिम विषय है भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी, काफी महत्वपूर्ण है। किताब में देखिए, आपने इस अध्याय में ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जाना, क्या आपने सोचा कि सारे विश्व को यह सटीक जानकारियां गणनाएं किसने दी? इसके पीछे बहुत सारे खगोलविद, गणितज्ञ एवं वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत है। यह निरंतर चलने वाला कार्य है। एक वैज्ञानिक जो कार्य करके जाता है उसके परिणामों को आधार बनाकर अन्य वैज्ञानिक उस पर कार्य करते हैं और इन परिणामों के आगे की खोज प्रस्तुत करते हैं। इन वैज्ञानिकों के महान कार्यों ने ही आज हमें बहुत सारे यंत्र, उपकरण, मशीनें और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति में भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत योगदान रहा है। इनके कार्यों ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित एवं अचंभित किया है। ऐसे ही कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनी तथा विश्व को इनकी देन के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे जानकर आप भारतीय होने में गर्व महसूस करेंगे। यहाँ पर हम कुछ महान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, जिनके कार्यों की वजह से जो भी जानकारियाँ हमें मिली हैं वह हमारे जीवन को और भी सुखद बनाती हैं। कुछ महान वैज्ञानिक हैं जैसे आर्यभट्ट, फिर वराह मिहिर और भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में, क्या आपने आर्यभट्ट का नाम पहले सुना है? वो कहाँ के रहने वाले थे? उन्होंने किस क्षेत्र में अनुसंधान किया था? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपने किताब में पेज 151 पर देखिए। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रथम महान खगोलविद एवं गणितज्ञ हुए हैं। इनका जन्म संवत 476 में हुआ। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और मेधावी होने से इस विश्वविद्यालय के शिक्षक भी रहे। इन्होंने अल्पकाल में आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। यह गणित एवं ज्योतिष का एक विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है। आर्यभट्ट के कार्य का प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टीय ग्रंथ से ही ज्ञात है। समूचे ग्रंथ में 108 छंद हैं और परिचय के रूप में 13 अतिरिक्त हैं। इसे 4 अध्याय में विभाजित किया गया है। पहला गीतिपाद, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालक्रियापाद और चौथा गोलपाद। अब इन चारों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पहला कितिक पाद, इसमें 13 छंद हैं। कितिक पाद में समय की बड़ी इकाइयां काल, मन्वंतर, युग आदि का वर्णन है। दूसरा गणित पाद, इसमें 33 छंद हैं। गणित पाद में क्षेत्रमिति और सरल, विघात, युगपत और अनिश्चित समीकरणों का समावेश है। तीसरा है काल क्रियापद, जिसमें 25 छंद हैं। काल क्रियापद में समय की विभिन्न इकाइयां और किसी दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि बताई गई है। अधिक मास की गणना, 6 तिथियां, सप्ताह के दिनों के नामों के साथ एक साथ दिन का सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। और चौथा है गोलपाद, जो 50 छंदों का है। गोलपाद में आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितिक, त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांति वृत्त, पृथ्वी के आकार, दिन और रात के कारण आदि सम्मिलित हैं। पश्चिमी वैज्ञानिक कोपरनिकस को जिन खोजों के लिए जाना जाता है, उन खोजों की शुरुआत आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले कर चुके थे। इनके द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण खोजें निम्न प्रकार से हैं। पहला, पाई के मान को शुद्ध रूप में निरूपित किया। दूसरा, पृथ्वी स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमती है। तीसरा, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। चौथा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पांचवा, सौरमंडल के भूकेंद्रीय मॉडल की परिकल्पनाएं कर सूर्य चंद्र ग्रहों की सही व्याख्या कर विभिन्न गणनाएं दी। छठा, पृथ्वी का आवर्तकाल एवं वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड दी गई, जिसमें आधुनिक विज्ञान के मान से 3 मिनट 20 सेकंड की त्रुटि रही। सात, पृथ्वी की परिधि की गणना की, जो वास्तविक मान से केवल 0.2% कम थी। आठवां, आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन तालिकाओं को 0 से 90 डिग्री तक निर्मित किया। आर्यभट्ट की खगोलीय गणना की विधियां बहुत प्रभावशाली थी, जो यूरोप में सदियों तक सर्वाधिक सूक्ष्म पंचांग के रूप में उपयोगी रही। आर्यभट्ट और उनके अनुयायियों द्वारा की गई तिथि गणना पंचांग व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भारत में निरंतर उपयोग में रही हैं। आर्यभट्ट ने आजकल के उन्नत साधनों के बिना जो खोजें की थी, उनकी महत्ता है। इनके कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। ये एक क्रांतिकारी विचारक थे। परंपराओं के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके इन्होंने बड़े साहस का परिचय देते हुए भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वस्थ परंपरा की स्थापना की। यह जानकारी आर्यभट्ट के बारे में थी। जैसा कि हमने पढ़ा, इन्होंने बहुत सारे ऐसे खोज किए जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं। इनकी गणनाएं और गणितीय खोज बहुत हद तक सही साबित हुई। आज इस वैज्ञानिक युग में जितनी भी मशीनें और टेक्नोलॉजी से हम खोजें कर पाते हैं, आर्यभट्ट ने इन सब के बिना उतने वर्ष पूर्व ही यह सब खोजें कर ली थी। उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे पाई के बारे में, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध इन्होंने बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताया, पृथ्वी की परिधि की गणना की, जो वास्तविक मान से केवल 0.2% कम थी। इस तरह से आर्यभट्ट के काम और उनकी खोज हमारे भारतीय होने के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत ही गर्वान्वित हैं कि आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक हमारे देश में जन्मे। अब हम आगे वराह मिहिर के बारे में पढ़ेंगे। वराह मिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इनका जन्म सन 499 में उज्जैन के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वराह मिहिर ने अपने पिता आदित्य दास से परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। इन्होंने समय मापक घट यंत्र इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ का निर्माण कराया तथा ईरान के शहंशाह के आमंत्रण पर जुंदी शाहपुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराह मिहिर का पत्थक उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्ष तक अद्वितीय रहा। कुसुमपुर पटना जाने पर वराह मिहिर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। इससे युवा वराह मिहिर को इतनी प्रेरणा मिली कि उसने खगोल ज्ञान को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। जब इनके ज्ञान की प्रसिद्धि चंद्रगुप्त द्वितीय तक पहुंची तो उन्होंने वराह मिहिर को अपने नौ रत्नों में शामिल कर लिया। इन्होंने त्रिकोणमिति, प्रकाशिकी एवं ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूत्र एवं सिद्धांत दिए। साथ ही आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्या सारणी को भी और अधिक परिशुद्ध बनाया। सन 587 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखित वृहद जातक, वृहद संहिता व पंच सिद्धांतिका पुस्तकें गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने पैगैलीय, रोमक, वशिष्ठ, शौर्य एवं पितामह नाम से पांच सिद्धांतों का वर्णन किया। वराह मिहिर विज्ञान इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति है जो वस्तुओं को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। आज इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वराह मिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। वस्तुतः ऋग्वेद काल से ही भारत की यह परंपरा रही है। वराह मिहिर ने पूर्णतः इसका परिपालन किया। इस प्रकार से हमने वराह मिहिर के बारे में पढ़ा, उनके प्रमुख कार्य जैसे वृह जातक, वृहद संहिता व पंच सिद्धांतिका पुस्तकें गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में जितना सही साबित हुई, जिस प्रकार से यह प्रसिद्धि पाई, उससे ज़्यादा ही वराह मिहिर आज के युग में अपने ज्ञान से सभी को प्रेरित कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत व जो जानकारियां उन्होंने अपने खोजों से जुटाई वह हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, भास्कर दो, जिन्हें भास्कराचार्य भी कहते हैं, इनका जन्म सन 1114 ईस्वी में बीजापुर कर्नाटक में हुआ। ये 12वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ हुए जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की जिसे हम आज उपयोग में ले रहे हैं। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट की कृतियों को जनमानस के समझने हेतु सरल व्याख्या की, साथ ही इन कृतियों पर आधारित अपनी स्वतंत्र रचनाएं भी की। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि की संस्कृत भाषा में रचना की जिसके चार भाग हैं, लीलावती, बीज गणिताध्याय, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, जिसमें क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गणित एवं गोले के संबंध में विस्तृत विवरण है। ये उज्जैन में खगोलीय प्रेक्षण के प्रमुख रहे। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, परंतु यह कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इनकी एक अन्य रचना कर्ण कौतूहल है जिसमें खगोल विज्ञान की गणना है जिसे पंचांग आदि बनाने के समय अवश्य देखा जाता है। एक अन्य ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित मार्ग पर अनवरत परिक्रमा करती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिसको भास्कर द्वितीय अपना गुरु मानते थे, के अधूरे कार्य को भी पूरा किया। भास्कराचार्य पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि शून्य से किसी संख्या को विभक्त करने पर अनंत प्राप्त होता है। भास्कराचार्य जिस काल में पैदा हुए और ज्ञान विज्ञान में सक्रिय रहे, तो दूसरी ओर हमारे समाज के भीतर भारी अंधविश्वास व्याप्त थे। ऐसे ही समय में कट्टर और परंपरावादी अंधविश्वासियों ने यह अफवाह फैलाई कि पृथ्वी बिना आधार की है और वह धंसती जा रही है। इन परंपरावादियों ने यह कार्य पौराणिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हुए समाज में अपने वर्चस्व के लिए दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया था। ऐसे समय में इन महान खगोल विज्ञानी ने अपने वैज्ञानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रमाण प्रस्तुत करके यह बताया कि निश्चय ही पृथ्वी बिना आधार के है, लेकिन उसके चारों ओर जो ग्रह, नक्षत्र आदि हैं, वे अपना गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर आपसी संतुलन बनाए हुए हैं। हमारी पृथ्वी ऐसी ही रहेगी और कभी नहीं धंसेगी। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने ही ये घोषणाएं पश्चिमी खगोल वैज्ञानिकों से सदियों पूर्व ही कर दी, जो भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी होने का ठोस प्रमाण है। भास्कर आचार्य के महत्वपूर्ण खगोलीय विचारों की दुनिया की कई भाषाओं में प्रस्तुति हुई है। इस प्रकार महत्वपूर्ण भारतीय खगोलीय एवं गणितीय सूचनाएं विश्व स्तर पर मान्य हुई। सम्राट अकबर के एक दरबारी विद्वान फैजी ने भास्कराचार्य की रचना लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। इसी प्रकार सन 1710 में कोलब्रुक नामक एक अंग्रेज विद्वान ने इसी ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए अपने द्वितीय कृत्रिम उपग्रह का नाम भास्कर रखा। इनके नाम के साथ द्वितीय इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भास्कर प्रथम लगभग 6वीं सदी में जन्म भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए। अन्य भारतीय गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, श्री धराचार्य, रामानुजन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी हुए जिन्होंने गणित एवं खगोल क्षेत्र में बहुत कार्य किए। राजवंश में भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में वेदशालाएं, जंतर मंतर का निर्माण करवाकर खगोल शास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हमने भास्कराचार्य के कार्यों एवं उनके खोजों के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने वराहमिहिर तथा आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा। इन सभी वैज्ञानिकों के कार्यों से हम यह जान सकते हैं कि भारत पूर्व में ही कितना ज़्यादा शक्तिशाली था विज्ञान के क्षेत्र में, और कई चीज़ें जो आज वैज्ञानिक ढूंढते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज से, वो हमारे वैज्ञानिक बहुत पहले ही खोज कर चुके थे। उनके खोजे गए सिद्धांतों एवं जानकारियों को आधार बनाकर ही आज के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु को हम पढ़ते हैं। किताब को देखिए। तारे, सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा आदि सभी आकाशीय पिंड ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड हैं। भारतीय पंचांग खगोलीय पिंडों की स्थिति एवं गति की जानकारी देने वाली पुस्तक है जो विभिन्न गणनाओं पर आधारित है। भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं जिन्हें तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण नाम से जानते हैं। चंद्रमा के क्रांति पथ में पड़ने वाले तारों के विशेष आकृति के समूह को नक्षत्र से जानते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। यह पृथ्वी चंद्रमा की गतियों के दौरान मार्ग में पहचाने गए हैं। सूर्य के विभिन्न मार्गों से परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर हमारा सौर्य परिवार बना है, जिसमें विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह आदि सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से मान्यता प्राप्त ग्रहों की संख्या 8 है, जो सूर्य से दूरी के आधार पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। बृहस्पति अथवा गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। भारतीय पंचांग के अनुसार पृथ्वी जिन खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है उन्हें ग्रह माना गया। ग्रहों की संख्या 9 है, जिन्हें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि तथा 2 छाया ग्रह राहु, केतु से जाना गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, साथ ही अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। एक परिक्रमण अथवा एक घूर्णन करने का समय प्रत्येक ग्रह के लिए भिन्न होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 12 मास में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस क्रांति पथ को 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में पड़ने वाले विशेष नक्षत्र के समूह को राशि कहा जाता है। इन्हें सौर मास से भी जानते हैं तथा इन्हें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन से जाना जाता है। पृथ्वी के क्रांति पथ को 2 भागों में बांटे तो एक भाग के लिए या 6 मास तक सूर्य की स्थिति पूर्व उत्तर पश्चिम रहती है, जिसे उत्तरायण कहते हैं, तथा अगले 6 मास तक प्रतिदिन सूर्य की स्थिति पूर्ण दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जिसे दक्षिणायन से जानते हैं। जब बुध सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य एवं पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह के बीच से सीधा गुजरता है तो पृथ्वी से ऐसा दिखता है जैसे सूर्य के चेहरे पर काला तिल जो धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है। इस खगोलीय घटना को बुध परागमन कहते हैं। इसी प्रकार शुक्र परागमन भी घटना घटित होती है। ये घटनाएं समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई और आगे भी देखी जा सकेंगी। अमावस्या के अंत पर सूर्य चंद्र दोनों एक समान राशि अंश पर रहते हैं। शीघ्र गतिमान चंद्रमा जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों का अंतर सिद्ध करता है उस कालांश अंतरांश को प्रतिपदा तिथि कहते हैं, जो आगे इसी प्रकार 12-12 अंशों के अंतर से तिथियां मानी जाती हैं। एक मास में दो पक्ष जिन्हें शुक्ल पक्ष पड़ता हुआ चंद्रमा तथा कृष्ण पक्ष घटता हुआ चंद्रमा कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। पूर्णिमा को चंद्रमा प्रायः जिस नक्षत्र पर रहता है उस चंद्रमास का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। इस आधार पर 12 भारतीय महीनों के नाम रखे गए हैं, जिन्हें क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन कहते हैं। विभिन्न खगोलीय पिंडों की प्रकृति, गति एवं आपसी संबंध की जानकारी होने पर विभिन्न खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी एवं विश्लेषण संभव है। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि ऐसे महान भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई सूत्र, सिद्धांत एवं नई जानकारियां देकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। अब हम अभ्यासार्थ प्रश्न को पढ़ेंगे एवं उसे हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा तारे। अगला प्रश्न, सौर्यमंडल में चंद्रमा को किस श्रेणी में रखा गया है? सौर्यमंडल में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए इसका सही उत्तर है स, उपग्रह। भारतीय पंचांग अनुसार नक्षत्रों की संख्या कितनी है? इसके बारे में हमने पढ़ा है। भारतीय पंचांग के अनुसार नक्षत्रों की संख्या 27 है, इसलिए इसका सही उत्तर ब, 27 होगा। भारतीय पंचांग अनुसार राशियों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा स, 12। पांचवा प्रश्न, हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सौर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन सबसे बड़ा पिंड सूर्य होगा, इसलिए सही उत्तर है ब, सूर्य। छठा प्रश्न, हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है अ, बृहस्पति। अगला प्रश्न, अधिक मास कितने वर्ष के अंतराल के बाद आता है? हमने इसके बारे में पढ़ा है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ब, 2 वर्ष के बाद। आठवां प्रश्न, दक्षिणायन के प्रारंभ में सूर्य की स्थिति किस राशि पर होती है? इसका सही उत्तर है अ, कर्क। कर्क संक्रांति के बारे में हमने पढ़ा है। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, अंक गणित पर आधारित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य। दूसरा प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। तीसरा प्रश्न, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद कौन सी तिथि आती है? इसके बारे में आप स्वयं किताब में खोज सकते हैं, इसका उत्तर बहुत ही आसान है। चौथा प्रश्न, यदि पूर्णिमा को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर है तो उस चंद्रमास का नाम क्या होगा? सारणी में दिए गए जानकारी के हिसाब से आप इस प्रश्न का भी उत्तर खोजें। पांचवा प्रश्न, कौन से ग्रह का कक्षीय काल सबसे कम है? सारणी 12.2 में ऐसी जानकारियां दी गई हैं, हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है। छठा प्रश्न, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को क्रम से लिखिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके बारे में भी आप सारणी 12.2 से लिख सकते हैं तथा इसका उत्तर अन्य भी बहुत पेजों पर दिया गया है। सातवां प्रश्न, स्थलीय ग्रहों के नाम लिखिए। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो 4 ग्रह हैं वही स्थलीय ग्रह कहे जाते हैं। आठवां प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है? ऐसा हमने पढ़ा है कि मंगल पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है। नवा प्रश्न, भारतीय पंचांग अनुसार छाया ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह आते हैं? कौन कौन से ग्रह हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, आप खोज सकते हैं। दसवां ग्रह, 2 ग्रह ए और बी सूर्य से क्रमशः एक्स और वाई दूरी पर है। यदि वाई का मान एक्स से अधिक है तो कौन से ग्रह का परिभ्रमण काल अधिक होगा? जो ग्रह सूर्य से नजदीक है उसका परिभ्रमण काल कम होता है और जो ग्रह सूर्य से जितना ही ज्यादा दूर है उसका परिभ्रमण काल उतना ही ज्यादा होता है। यह प्रेक्षण आप सारणी 12.2 से भी कर सकते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों को क्रम से लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय पंचांग में 5 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, इसके बारे में हमने चर्चा की है। 3, नक्षत्र से क्या अभिप्राय है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, किन्हीं 5 नक्षत्रों के नाम लिखिए। नक्षत्र के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी इस अध्याय से हासिल की है, आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 4 प्रश्न, भारतीय पंचांग अनुसार तिथि का निर्धारण किस प्रकार होता है, संक्षेप में समझाइए। तिथि के बारे में भी हमने पढ़ा है और चंद्रमा और सूर्य के गति से किस प्रकार से तिथि संबंधित है, यह भी हमने पढ़ा है, इसी को यहाँ पर लिखना है। 5 प्रश्न, ग्रहों के नाम उनके आकार के क्रम में लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सारणी 12.2 को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का भी उत्तर खोज सकते हैं। मैं सही क्रम बताता हूँ। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा है पृथ्वी, उसके बाद वेनस, फिर मार्स, और सबसे छोटा ग्रह है बुध अर्थात मरकरी। इसे आप खुद से भी जरूर खोजें, किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, और इसी प्रकार से छोटे ग्रहों के द्रव्यमान और व्यास को भी जरूर याद रखें। उत्तरायण और दक्षिणायन से क्या अभिप्राय है, समझाइए, हमने इसके बारे में चर्चा किया है। 7 प्रश्न, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में समझाइए, हमने इसके बारे में चर्चा किया है। 8 प्रश्न, भारतीय पंचांग अनुसार राशि का संबंध किसकी गति से है, राशियों का निर्धारण किस प्रकार किया गया है, राशियों के बारे में हमने एक अच्छी जानकारी इस अध्याय से जुटाई है, आप अपने किताब के पेज 147 पर देखिए। 9 प्रश्न, मकर संक्रांति से क्या अभिप्राय है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। 10 प्रश्न, अधिक मास से आप क्या समझते हैं, अधिक मास के बारे में भी एक विशेष जानकारी के रूप में मैंने आपको बताया है। 11 प्रश्न, बुध पारगमन को समझाइए तथा इसकी तुलना शुक्र पारगमन से कीजिए। बुध पारगमन और शुक्र पारगमन लगभग एक ही प्रकार की घटना है, लेकिन बुध पारगमन बहुत ही कम अंतराल पर होता है, जबकि शुक्र पारगमन एक बड़े से अंतराल पर होता है। इसके बारे में आप अच्छी जानकारी अपने किताब से लिखिए। 12 प्रश्न, भारतीय पंचांग अनुसार सौर्य मासों के नाम लिखिए, यह भी हमने चर्चा किया है। इसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न है वह आप स्वयं और अपने शिक्षक की सहायता से हल करने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से हमने 9वीं कक्षा के चैप्टर 12 जिसका शीर्षक है आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग को भी पढ़ लिया है, समझ लिया है, और जो जरूरी प्रश्न है उनको हल भी किया है। मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।